नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के संचालन की अनेक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सराहना की। अमेरिका ने चीन की तेल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनियों और ईरान से तेल ढुलाई में शामिल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुंचे। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की उम्मीद जगी। लेबनान के दक्षिणी भाग में इजरायली हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज जोहान्सबर्ग में। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के संचालन की अनेक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सराहना की है। भूटान, मिस्र, मॉरिशस और मोल्दोवा के प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया और चुनाव आयोजन की तारीफ की। मॉरिशस के उच्चायुक्त ने कहा कि भारत लोकतंत्र की राह पर चलते हुए दुनिया को चुनाव के तौर तरीके और अनुभव सिखा रहा है।
ये एक बड़ा आवासीय क्षेत्र है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं और वे वहीं पर अपना वोट डाल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की है ताकि कोई भी व्यक्ति आकर अपना वोट डाल सके, उसे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े।
मोल्दोवा की प्रतिनिधि डाना पायो ने उच्च मतदाता भागीदारी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं की सराहना की। नामीबिया के प्रतिनिधि गेरसन तिजुहेनुना ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों का प्रबंधन उत्कृष्ट था, वहां चिकित्सा सहायता, मतदाताओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और सुलभ व्यवस्था थी। इंडोनेशिया के प्रतिनिधि नी मार्डे महात्मा देवी ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम को भारतीय चुनावी प्रणाली को समझने का एक शानदार अवसर बताया।
IBP 2026 कार्यक्रम के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि इससे हम विदेशियों को भारत में चुनावी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने का शानदार मौका मिलता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया हमारे देश से कई मायनों में मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं और उन्हें एक उदाहरण के रूप में अपना सकते हैं या दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं।
सिमिलर विद आवर कंट्री बट इट आल्सो हैव डिफरेंसेस व्हिच इज वी कैन आल्सो लर्न अबाउट दैट।
अमेरिका ने चीन के एक बड़ी तेल शोधक कंपनी हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ईरान के तेल की ढुलाई से जुड़ी लगभग 40 कंपनियों और टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कदम ईरान से तेल निर्यात को सीमित करने के लिए उठाया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ सप्ताह बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच चीन में बैठक होनी है। हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की क्षमता लगभग 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह रिफाइनरी वर्ष 2023 से ईरान से कच्चा तेल खरीद रही है, जिसे ईरान को करोड़ों डॉलर मिले हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि समुद्र में मौजूद रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर छूट को जारी रखने की अमेरिका की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र में मौजूद ईरान के तेल पर दी गई रियायत समाप्त हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने मार्च में रूस के समुद्र में मौजूद तेल पर छूट दी थी। श्री बेसेंट ने कहा कि ये रियायत कमजोर देशों के लिए दी गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कल देर रात अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्ति के लिए ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले कहा कि वे क्षेत्रीय घटनाक्रम पर परामर्श के लिए पाकिस्तान, ओमान और रूस की यात्रा कर रहे हैं। इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल होंगे। श्री बाकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की चिंताएं पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाई जाएंगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि उपराष्ट्रपति जीडी वेंस वाशिंगटन से जुड़े रहेंगे और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ समन्वय करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमरीकी मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौता होने तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा। 11 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में हुई वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका था। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XHIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 6 लोगों के मारे जाने और 2 के घायल होने की खबर है। इसराइल और लेबनान के बीच 3 सप्ताह के लिए युद्धविराम बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद कल भी इसराइल और ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला के बीच हमले जारी रहे। इसराइल ने यार्टर और काफरा में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्ला ने राम्या में एक इसराइली बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि इसराइल और लेबनान ने अपने संघर्ष विराम को बढ़ा दिया है। सुश्री लेविट ने क्षेत्र में शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन अमेरिका आगे की चर्चा के लिए दोनों देशों के नेताओं का स्वागत करेगा। एक दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसराइल और लेबनान वाशिंगटन में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद अपने संघर्ष विराम को 3 सप्ताह और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अमरीका में पहली बार केंद्र स्तर पर मृत्यु दंड पर तेजी से अमल के लिए सजा याफ्ता को गोली मारने का निर्णय लिया गया है। ट्रंप प्रशासन मौत की सजा के लिए पेंटो बार्बिटल वाले इंजेक्शन के उपयोग को भी दोबारा मान्यता देने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। फिलहाल अमेरिका में 5 राज्यों में ही फायरिंग स्क्वाड के उपयोग की अनुमति है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से मुलाकात की है। इस वर्ष जनवरी में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली वेनेजुएला यात्रा थी। दोनों नेताओं ने सीमा सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी और सैन्य अभियानों से जुड़ी योजनाओं में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। श्री पेट्रो ने कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। भारत ने 23 और 24 अप्रैल को ब्रिक्स के उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका यानी ब्रिक्स MENA के लिए विशेष दूतों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में विवरण साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दक्षिण मामलों के सचिव डॉ. नीना मल्होत्रा ने 23-24 अप्रैल को नई दिल्ली में ब्रिक्स उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के विशेष दूतों की बैठक की अध्यक्षता की। 17 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 230 करोड़ डॉलर बढ़कर 703 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसी सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 148 करोड़ डॉलर बढ़कर 557 अरब डॉलर से अधिक हो गयी। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक हिंदू मंदिर के उपासक का शव मिलने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। नयन दास उर्फ नयन साधु का शव 22 अप्रैल को खुरशकुल के एक पहाड़ी वन क्षेत्र में मिला था। महिला T20 क्रिकेट में 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। जोहानसबर्ग में ये मैच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के संचालन की अनेक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सराहना की। अमेरिका ने चीन की तेल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनियों और ईरान से तेल ढुलाई में शामिल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची पाकिस्तान पहुंचे। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की उम्मीद जगी। लेबनान के दक्षिणी भाग में इजरायली हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज जोहानसबर्ग में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।